मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 17 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौ नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं श्याम सुंदर जांगीर, सागर मध्य प्रदेश से हैं, सोने लाल बहेलिया उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, ब्रजेश कुमार चौधरी दिल्ली से हैं और दिल्ली से ही हैं विनीत कुमार जिन्होंने ऑब्लिक करके इन्होंने बिहार लिखा है तो शायद बिहार के रहने वाले होंगे और अभी दिल्ली में रह रहे होंगे। अरविंद कुमार प्रजापति न्यू दिल्ली से, प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश से, पवनेश कुमार इलाहाबाद से, रंजीत कुमार पटना से और शलील भटनागर लखनऊ से। तो श्याम सुंदर, सोनेलाल, ब्रजेश कुमार, विनीत, अरविंद, प्रताप, पवनेश, रंजीत और सलील, आप सभी नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, स्वागत के बाद बहुत दिनों के बाद यह मौका आया है कि जब हम लोग किसी स्टूडेंट को अपनी तरफ से बधाई देंगे और यह मौका दिया है प्रियम दत्ता ने जो वेस्ट बंगाल के हैं। उन्हें अभी वेस्ट बंगाल के स्टेट सिविल सर्विस के प्री में सफलता प्राप्त हुई है और उन्होंने इसका श्रेय डेली ऑडियो गाइडेंस को दिया है। तो प्रीतम, आपको आपकी सफलता के लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, पत्नी मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही हम सब अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि ईश्वर आपको इसके मेंस में और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी सफलता प्रदान करे। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरे पास आज कुछ सूचनाएं हैं और एक मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट सूचना ही है जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं शादाब अकबर कुरैशी, उन्होंने ये सूचना भेजी है और यह सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। सूचना यह है दोस्तों कि दिल्ली में 18 जून को सुबह 9:45 बजे से एक वर्कशॉप जैसा है, सेमिनार जैसा है कह लीजिए, जिसमें हिंदी के अब तक के सिलेक्टेड 3-4 जो अधिकारी हैं, सिविल सर्विस के अधिकारी हैं, वे आएंगे और स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे। जो मेरे पास नाम आए हैं कि जिनके आने की उम्मीद है, उस उनमें हैं अनुराधा पॉल, जिनका ऑल इंडिया में 62nd रैंक था, 62वां स्थान था। दूसरे हैं गौरव सिंह सोंगरवाल, जो 99th रैंक जिन्होंने हासिल किया था, और एक हैं धवल जायसवाल जिन्होंने 452वीं पोजीशन हासिल की थी। साथ ही कुछ और भी सिविल सर्वेंट के आने की उम्मीद है, और निशांत जैन जिन्होंने 13th रैंक पिछले साल हासिल की थी वो भी इस समय उपस्थित रहेंगे और उम्मीद है कि कुछ और भी सिविल सर्वेंट इस वर्कशॉप में आएंगे। मित्रों, बेसिकली ये जो वर्कशॉप आयोजित की गई है, खासकर बहुत से स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत से अपने मीडियम को लेकर के भ्रम होते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप में उनके इन भ्रमों को दूर करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी और कैसे तैयारी की जानी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, 18 जून को सुबह 9:45 पर और स्थान है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली। 18 जून सुबह 9:45 पर, वेन्यू है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली। मित्रों, इस सूचना के बाद अब आज चूंकि शुक्रवार है, मुझे कुछ और भी सूचनाएं आप लोगों को देनी है और जो कि मैं हर शुक्रवार को देता ही हूं ताकि आप लोगों को भी वो चीजें याद आ जाए जो पहले से जानते हैं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि सैटरडे संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि अभी तक मिलती रही है। और प्रेस क्लिपिंग के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल भी चीजें पढ़ने के लिए सैटरडे को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो एडिशनल चीजें होती हैं योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक आर्टिकल। एक एक आर्टिकल हिंदी के होते हैं और एक एक आर्टिकल इंग्लिश के होते हैं, यानी कि योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल चार आर्टिकल आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो करेंट कंटेंट जो रोजाना आ रहा है वो करेंट कंटेंट भी उपलब्ध रहेगा। और सैटरडे को एक नई चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, वह है वीकली क्वेश्चन, तो आपको वीकली क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, हमारे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो और आर्टिकल्स कुछ उस तरह के उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उन्हें उनकी चीजें उनके मेल पर भेज दी जाएंगी। तो ये मित्रों कुछ सूचनाएं थी जो शुक्रवार को आप लोगों को दी ही जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों से एक सुझाव मांगा था कि जो लाइफ मैनेजमेंट के स्वरूप में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करने जा रहा हूं, स्वरूप में तो नहीं कहना चाहिए, कंटेंट में कह लीजिए, जो बोलने बताने का जो अंदाज है, जो सामग्री है, उसमें परिवर्तन करने जा रहा हूं, इस पर आप लोग अपनी राय दें। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने अपनी राय दी। इसके पक्ष में राय दी ये बाद की बात है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आप लोगों ने इस पर अपनी राय दी और काफी संख्या में आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये बात अलग है कि किसी एक ने भी उसके विरोध में बात नहीं लिखी, और हो सकता है कि उनके मन में ऐसी बात हो भी, तो सामान्यतया फिर स्टूडेंट लिखते नहीं है, उनके इस व्यवहार और आचरण को तो मैं भी जानता हूं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि उसके प्रति आप लोगों ने अपनी रुचि दिखाई, आप एक्टिव हुए, यही मान करके नहीं चल रहे थे कि ठीक है हम नहीं भी भेजेंगे तो क्या है, सर तो बताते ही रहेंगे और हम नहीं लिखेंगे तो दूसरा कोई लिख देगा, चीजें तो होती ही रहेंगी। फ्रेंड्स, लाइफ मैनेजमेंट का आज का सबसे बड़ा मैसेज कह लीजिए कि यही है कि आप अपने काम को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, खुद कीजिए, भले ही वो दूसरा भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी जो एक्टिविटी है वो दिखाई देनी चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो फ्रेंड्स, अब मैं आज लाइफ मैनेजमेंट के अंदर उसी पैटर्न को लेकर के आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सच पूछिए तो कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद आप अब जीवन के नए क्षेत्र में भी उतरने जा रहे हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करना अपने आप में एक नया क्षेत्र है, ये उस तरह की परीक्षा नहीं है जो परीक्षाएं आप अभी तक देते आ रहे हैं और जिसकी आपको आदत पड़ गई है, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की परीक्षा है। हालांकि नाम इसका भी परीक्षा ही है और पेपर भी समझिए उसी तरीके से आते हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदला हुआ होता है, तो इसे आप नया माने। और अगर आप परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप जीवन में प्रवेश कर गए हैं, नौकरी करने लगे हैं, तो इसका भी मतलब ये है कि अब आप का एक भाग पूरा हुआ और आप अब नए चरण में एंटर कर गए हैं। दोनों ही मामलों में आप नए हैं, राइट? तो हम इस नए के बारे में कुछ बात करते हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं वो बाज पक्षी हो सकता है। बाज पक्षी जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने हमें भी बनाया है। मित्रों, बाज पक्षी के बारे में मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूं, उसका एक संदर्भ बताता हूं जो मुझे मिला है और मैं उसे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। बाज पक्षी की उम्र लगभग टोटल ये माना जाता है कि 70 साल की होती, 70 इयर्स की होती है, और आदमी की भी उम्र लगभग वही, हमारे यहां शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64-65 इयर्स से 70 मान लें हम, तो दोनों की उम्र तो लगभग एक जैसी ही होती है। अब आप देखिए कि बाज पक्षी क्या करता है। दोस्तों, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो करता क्या है फ्रेंड्स, जीवन के 40वें वर्ष में बाज के तीन अंग दुर्बल होने लगते हैं, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, शिकार पकड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, फलस्वरूप भोजन करने में उसे बहुत व्यवधान आता है, बहुत बाधा आने लगती है क्योंकि चोंच उसकी आगे की जो है वो मुड़ गई है। पंख भारी हो जाते हैं, ये जब 40वें वर्ष में, और जब पंख भारी हो जाते हैं तो उसकी जो उड़ान है आकाश में, जो उन्मुक्त उड़ान होती थी, जो ऊंची उड़ान होती थी, वो सीमित हो जाती है। ये 40 वर्ष के बाज की एक दशा है। अब बाज क्या करे, इसे स्वीकार कर ले और रिमेनिंग जो उसके लाइफ के 30 इयर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो अभी आधी ही यात्रा पूरी कर पाया है। अब एक उपाय यह है कि रिमेनिंग जो 30 इयर्स हैं उसको इसी तरह से वो आगे बढ़ाता रहे, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे, या फिर वो कुछ और भी करे। क्या वो कुछ और कर सकता है, या हार मान जाता है, या मान लेना चाहिए? मित्रों आइए अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ऐसे में बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर एकांत में अपना घोंसला बनाकर अपने पुनर्स्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे में बाज, ऐसे में मतलब पंजे लंबे और लचीले हो गए हैं, शिकार नहीं पकड़ सकते, चोंच सामने से मुड़ गई है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, और पंख भारी हो गए हैं और वो उड़ नहीं सकते, तो बाज फिर रह क्या गया, जीवन खत्म होने के करीब है। तो ऐसे में बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर एकांत में अपना घोंसला बनाकर अपने पुनर्स्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, क्यों? ताकि नई चोंच आ सके। इसी प्रकार अपने पंजों और अपने पंखों को भी नोच नोच कर नष्ट कर देता है, और फिर लगभग 150 दिनों की असह्य पीड़ा और दुखद प्रतीक्षा के बाद उसे पहले जैसी ही भव्य और ऊंची उड़ान मिल जाती है, वही ऊर्जा, वही सम्मान और वही पहले जैसी गरिमा। दोस्तों ये है बाज को पुनर्जीवित होने की उसकी अपनी की अपनी तकनीक, कि किस तरह से बाज पक्षी जो खत्म होने के करीब है अपने को फिर से पुनर्जीवित करता है, फिर से नया बनाता है, हार नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, वो पुरानों को छोड़ता है, पुरानों को नष्ट करता है। आप देख रहे हैं ना, चोंच खत्म कर देता है, अपने पंखों को खत्म कर देता है, अपने पंजों को खत्म कर देता है, क्योंकि जब आप खत्म कर देते हैं तभी तो नए आएंगे। फ्रेंड्स कल सुबह जब मैं अपने घर के सामने ही पार्क में अर्ली मॉर्निंग जब टहल रहा था, लगभग 5:30 बजे का, 5:15 बजे का समय होगा, तो हमारी कॉलोनी के एक सज्जन वहां के फूलों को तोड़ रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उनको थोड़ा सा टोका, बट नेचुरल कि उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने बड़े अच्छे तर्क कुतर्क देने लगे। मैं उसमें से एक तर्क केवल आपके सामने रखता हूं। पार्क के एक साइड के जो फूल थे उनकी डालियां काट दी गई थी, अभी छांट दी गई है, लेकिन दूसरे तरफ की डालियां उनकी अभी भी लहलहा रही हैं जिनमें फूल लगे हुए थे। उसने शिकायत की कि आप देखिए, इसको भी देखिए कि इधर की डालियां काट डाली गई हैं, आप इसको तो कुछ कहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि जिन डालियों से आप फूल तोड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इनकी भी डालियां कभी काटी गई थी, आपको याद आ रहा है? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर इनकी डालियां काटी नहीं गई होती कुछ समय पहले तक, तो ये जो आपको इतने झबराए हुए जो ब्रांचेस शाखाएं दिखाई दे रही हैं, और उन झबराए हुए शाखाओं में जो इतने सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहां से आते? तो मित्रों जब हम पेड़ को एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर काट देते हैं तो पेड़ मरता नहीं है, पेड़ अपने ठीक उसी हिस्से से नई नई शाखाएं निकाल करके बहुआयामी हो जाता है, अपने को झबरेदार बना लेता है, अपने को गुंबद नुमा बनाता है, जो अभी केवल ऊंचा लंबा होता चला जाता था वो विस्तार पा जाता है, लंबाई का ही नहीं बल्कि सच पूछिए तो चौड़ाई का भी विस्तार पा जाता है। वो लंबाई में जाता कमजोर हो जाता, लंबाई में जाता उसको छाया नहीं मिलती, लंबाई में जाता उसके पास शाखाएं ज्यादा नहीं होती, जब शाखाएं ज्यादा नहीं होती तो फूल फूल और फल भी ज्यादा नहीं होते। लंबाई में ज्यादा जाता तो अगर शाखाएं ज्यादा नहीं होती तो पक्षियों का बसेरा भी उस पर ज्यादा नहीं होता, उस पेड़ की छाया भी ज्यादा नहीं होती। तो उसने कहा है, आमंत्रित किया है मालिक को, आमंत्रण देता है कि मुझे काटो, मैं उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा विस्तार हो, मैं मल्टी डाइमेंशनल बनूं, मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों को छाया दे सकूं, मैं पक्षियों के डेरे अपने अंदर बना सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा फल फूल दे सकूं, मुझे पतला और लंबा नहीं बनना है, मुझे गुंबद नुमा बनना है। मित्रों, ये पीड़ा की देन होती है, पीड़ा अपने आप में एक वरदान होता है, अभिशाप नहीं। जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, मान करके चलिए कि उसने जीवन को समझ लिया है, और मित्रों यही आज के लाइफ मैनेजमेंट का मैसेज है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, आपने पहली जो न्यूज सुनी वो टैक्सेस को लेकर थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी रेवेन्यू ऑफिसर्स से मिले, और आप लोगों में से बहुत से लोग जो सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि सेलेक्ट होने के बाद आपको रेवेन्यू सर्विस भी मिले। आपने देखा प्रत्यक्ष कर बोर्ड और उत्पादन शुल्क और आबकारी विभाग मतलब डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर किया था, यानी कि जो रेवेन्यू सर्विस है उसके दो भाग होते हैं। कुछ लोग इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स में जाते हैं और कुछ कस्टम एंड एक्साइज में जाते हैं, और ये दोनों मिलकर के हमारे देश के पूरे टैक्स के जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरेक्शन था, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुछ बातें कहीं, उसमें जो मेन बात थी उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारा आधार है, जो टैक्स देने वालों की जो संख्या है वो डबल करने की कोशिश होनी चाहिए। राइट फ्रेंड, आपको मालूम होगा, मुझे ध्यान आ रहा है कि करीब डेढ़ दो महीने पहले एक और स्टेटमेंट आया था, हमारे वित्त मंत्री जी का ही था, और जिसमें यह बताया गया था कि हमारे यहां केवल 1.2 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। सोच करके देखिए, 1% लोग टैक्स देते हैं। ये बात अलग है कि जो टैक्स जो फाइल की जाती है जो टैक्स के असेसमेंट के लिए, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन टैक्स पेयर हमारे यहां बहुत कम है। और उस समय याद कीजिए कि मैंने आपको बताया भी था, कुछ तथ्य भी आपको बताए थे, क्योंकि उस पर एक एडिटोरियल भी लिखा गया था। और ये सच में बहुत शर्मनाक सी बात है कि इतनी बड़ी आबादी में, चलिए आबादी कुछ भी हो, केवल 1% लोग टैक्स दे रहे हैं। भारत उतना गरीब तो नहीं ही है, हमारे पास जो मध्यम वर्ग से ऊपर के लेयर को आप देखेंगे तो उसकी काफी बड़ी संख्या है। साफ है कि टैक्स की चोरी होती है। अब टैक्स की चोरी क्यों होती है फ्रेंड्स, आपको केवल इस पर विचार करना है। सिविल सर्विस के पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है, क्यों टैक्स की चोरी होती है? क्या टैक्स के रेट्स बहुत हाई हैं इसलिए टैक्स की चोरी होती है? क्या टैक्स का सिस्टम बहुत जटिल है, लोगों को भरने में बहुत दिक्कत जाती है, क्या टैक्स की चोरी लोग इसीलिए करते हैं? क्या अधिकारियों से वो भयभीत रहते हैं कि अगर हम फाइल करेंगे तो फिर अधिकारी के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्या इसलिए टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती है? क्या इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, लोगों को इस बात का भय ही नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, वो मान करके चलते हैं कि पकड़े जाएंगे तब भी मामला ले दे करके निपट जाएगा, या ब्लैक मनी भी हमारे पास रहेगा तो सरकार कोई बहुत हार्ड स्टेप नहीं लेती है उसके लिए, या लेती भी है तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि कोई नियम कानून आ जाए कि आप इस अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा करने लगेंगे, इसलिए वो टैक्स नहीं देते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु मैंने आपको बताए हैं जिसके आधार पर आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि टैक्स लोग क्यों नहीं देते हैं। मित्रों, इसी के साथ ही अखबार में जो खबर थी, न्यूज में तो नहीं थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी की, जो लगातार आप देखते हैं कि इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं, चौंकाने वाले वक्तव्य भी देते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां टैक्सेस बहुत हाई है, टैक्स के जो रेट बहुत हाई है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो हमारी बचत दर है, जो राष्ट्रीय बचत दर है, वो जो 33% पर आ गई है वो बहुत कम है, इसे एटलीस्ट 40% तो होना चाहिए। तो ये एक अच्छा आंकड़ा उन्होंने बताया कि 40% होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, इसे खत्म कर देना चाहिए, इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ये लोगों को डिस्करेज करता है, चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, टैक्स की चोरी के लिए। तो मित्रों, इस पर भी एक थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि क्या इनकम टैक्स को खत्म किया जाना उपयुक्त होगा? क्या सच में कुछ ऐसे देश हैं जहां इनकम टैक्स होता ही नहीं है, या क्या इनकम टैक्स को और किसी दूसरे टैक्स से रिप्लेस किया जा सकता है? जैसे एक विलासिता कर भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूं, तो अभी उसका जो भी टैक्स लग रहा होगा 5% 10% उसकी कीमत का, लेकिन अगर मैं इस लायक हूं कि मैं 10 लाख रुपए की कार चला सकता हूं, तो मतलब मैं पैसे वाला तो हूं, तो फिर उसी कार के समय में उनसे कुछ ऐसा टैक्स ले लिया जाए जो एक तरीके से इनकम टैक्स की क्षतिपूर्ति कर सके। तो ये कुछ ऐसे मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, बीच में 2 दिन की छुट्टी है, ताकि आप इन पर विचार कर सके। इससे आपका दिमाग जो है थोड़ा सा गतिशील होगा, है ना, एक्टिवेट होगा, तो आप इस पर सोचिएगा। मित्रों, फिर दूसरी जो खबर थी वो भी इंपॉर्टेंट खबर थी। आपने सुना कि हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे जो समुद्री मार्गों की जो सुरक्षा है उसके लिए एक मतलब मीटिंग में भाग लिया। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के सिविल सर्विस के लिए है। हालांकि पिछले साल भी इस पर क्वेश्चन आया था। आपको मालूम है कि जो मुंबई में जो हमला हुआ था उसके जो आतंकवादी थे वो समुद्री मार्ग से ही आए थे, गुजरात साइड से समुद्री मार्ग से वो वहां पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने अंजाम दिया था। उसको देखते हुए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को इंश्योर करे, क्योंकि हमारे पास आंकड़े में भी बताया, न्यूज में भी बताया गया कि 7516 किलोमीटर लंबे तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट है हमारे पास। नक्शे में आप देखेंगे तो समुद्र के किनारे का तट जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबा है और जो 3 समुद्र से जुड़ा हुआ है ना, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और खासकर जो आतंकवादी गतिविधियों का इतना विक्टिम रहा हो कि अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को इंश्योर करे। मैंने क्यों कहा फ्रेंड्स कि यह सिविल सर्विस के लिहाज से इंपॉर्टेंट मालूम हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो दक्षिण चीन सागर में जो गतिविधियां चल रही हैं, जहां चीन अपनी घुसपैठ लगातार बढ़ाता चला जा रहा है और जिसको लेकर भारत तो चिंतित है ही, क्योंकि भारत तो सीधे ही उससे जुड़ा हुआ है, अमेरिका जैसे देश भी इसको लेकर के चिंतित है, और साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे देश हैं जो दक्षिण चीन सागर के आसपास हैं वो तो चिंतित ही हैं, जो वियतनाम वगैरह देश है वो तो ऑलरेडी चिंतित ही हैं कि उनको लगता है कि जैसे चीन का उस पर आधिपत्य हो जाएगा और पूरा का पूरा वहां से जो जलमार्ग है उस जलमार्ग पर चीन का एकाधिपत्य हो सकता है, मोनोपोली हो सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो जलमार्गों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हैं कि भारत खासकर दक्षिण चीन महासागर को लेकर के चिंतित होने के कारण लगातार चीन की जो गतिविधियां उनका विरोध भी कर रहा है और उसके अगेंस्ट में अपने लिए एक डिफेंस भी तैयार कर रहा है, और अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास है वहां वो शुरू भी हो गया, और एक भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका के साथ उसके डिफेंस टाइज हो गए हैं और कल वहां के सीनेट ने भी उसे पारित कर दिया, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि खासकर कही जाएगी, और देख रहे हैं आप कि भारत और अमेरिका की जो निकटता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हहैं और लगभग 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं 20 में से। मुझे लगता है कि 2 अभी टॉपिक ऐसे चल रहे हैं जिनको हम इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एक जिसकी चर्चा अभी मैंने की, दक्षिण चीन सागर में भारत अपने डिफेंस के लिए क्या कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो परमाणु आपूर्ति जो समूह है ना, न्यूक्लियर सप्लाई जो ग्रुप है, इसमें भारत की सदस्यता को लेकर के आप देख रहे हैं कि काफी डिस्कशन चल रहा है ना, काफी मंथन चल रहा है। मेरे समझ से 22 या 24 तारीख को वियना में उसकी एक और मीटिंग होनी है, देखते हैं कि उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक इतना ज्यादा लाइट में आ चुका है और सच पूछे तो इस पर इतनी बहस हो चुकी है, आर्टिकल्स आ चुके हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं कि वियना में चाहे कोई भी फैसला हो लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से यह मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ता है, तो इस पर भी आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक जो तीसरी खबर थी, हालांकि खबर तो वो छोटी है लेकिन प्रकारांतर से इसे हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है जिसे हम एनजीओ कहते हैं। न्यूज में आपने सुना कि एक एनजीओ है तिस्ता सीतलवाड़ का, जो सबरंग ट्रस्ट नाम से जो एनजीओ है, सरकार ने अभी उसको बैन कर दिया है, उसके पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। आपको मालूम है कि कोई भी अगर एनजीओ खोलता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जरूरी नहीं है आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी समाज के काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर आपको जो अनुदान है, चाहे सरकार भी अनुदान देती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी देती हैं, कुछ प्राइवेट फर्म्स भी देती हैं, तो उसके मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मित्रों अभी पिछले दो साल से स्पेशली आप देखेंगे कि जो एनजीओज हैं उन सब के जो काम हैं उनको सरकार बहुत नजदीक से वाच कर रही है, रिव्यू कर रही है। और इससे पहले लगभग साल भर पहले ग्रीन पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ के रूप में, उसके साथ भी बहुत विवाद हुआ था। देखिए बहुत सिंपल सा लॉ है कि जो एनजीओज पैसा बाहर से लेते हैं जिसको हम फॉरेन फंड कहते हैं, जिसके आधार पर अभी सब रंग ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द भी किया गया है, उसको आप उसी काम के लिए लगा सकते हैं जिस काम के लिए आपने वो पैसा लिया है, उसे डाइवर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये गड़बड़ी की थी कि उसे डाइवर्ट करके उसमें अपने लिए वो खर्च करने लगे थे, उसी को आधार बना करके सरकार ने उनका पंजीकरण रद्द कर दिया है। दूसरा ये है मित्रों कि जो एनजीओ की जो एक्टिविटीज हैं कुछ एनजीओज की, वो भी काफी थोड़ी सी संदेहास्पद सी लोगों को लगने लगी है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो एनजीओज हैं ये भारत में विदेशी इशारों पर काम कर रहे हैं और भारत का जो विकास है उसमें बाधा खड़ा करना ही कहीं न कहीं इनका एक मकसद सा बन गया है, ऐसा माना जाने लगा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कारखाना लगना है और उस कारखाने को लगाने के लिए आपको कुछ जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, लेकिन वहां कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे, तो अब पर्यावरण से जुड़ा हुआ एनजीओ विरोध कर सकता है कि इतने पेड़ नहीं कटेंगे। या जमीन एक्वायर करनी है तो वो आदिवासियों को भड़का करके कह सकता है कि आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, तो आप यहां ये जमीन मत दीजिए। और इस तरह के प्रमाण देखने में भी आए हैं, इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में एनजीओ के बहुत से ऐसे काम हैं जो संदेहास्पद भी मालूम पड़ने लगे। ऐसा नहीं कि सभी एनजीओज के बारे में यह कहा जा रहा है, लेकिन फिर बहुत एनजीओज के बारे में ऐसा है। एक आरोप यह भी लगता है कि रजिस्टर्ड जो एनजीओ हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो हर साल अपना एक फाइल करेंगे, अपना जो असेसमेंट है, कितना उनको पैसा मिला, उस पैसे को उन्होंने किस किन कामों में लगाया, तो वो पूरी के पूरे अपने खर्च और गतिविधियों की जानकारी देंगे। लेकिन ज्यादातर एनजीओ ऐसे हैं जो इस तरह की जानकारियां नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एनजीओ है आप जानते हैं कि ये भी एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका रोल धीरे धीरे देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां तो ये बहुत ही हाई लेवल की है, मतलब एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसी इनकी अहमियत हो गई है। तो मित्रों आपको इस टॉपिक को भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलना चाहिए, और मैं अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड बैच के स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि उनको इस पर मैंने बहुत डिटेल में एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया था, तो एक अच्छा अवसर है जबकि वो उस ऑडियो को एक बार फिर से सुन ले। एक जो अगली खबर थी दोस्तों वो दालों के उत्पादन को लेकर के थी। आप देख रहे हैं कि महंगाई फिर से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, जिसमें दाल जो है ना केंद्र में है। दालों के उत्पादन को लेकर के बहुत पहले मैंने डिटेल में आप लोगों से डेली ऑडियो गाइडेंस के अंतर्गत ही मैंने बात की थी, तो मित्रों अब उसको दोहराने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारत में दालों की कमी क्यों है, इतनी महंगी दालें क्यों हो जाती हैं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है, इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए ताकि इस पर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनके जवाब दे सकें। मित्रों अब जो आखिरी खबर है वो ये कि आपने एक न्यूज सुनी आर्थिक खबरों के अंतर्गत कि सोने की कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और ये भी उसका एक रीजन रहा कि वर्ल्ड मार्केट में चूंकि 1.4% वृद्धि हुई तो भारत में भी वृद्धि होनी ही थी, क्योंकि अब तो पूरी की पूरी दुनिया का बाजार ही एक हो चुका है। इसके बाद आपने एक लाइन और सुनी कि जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक में जैसे हमारे यहां का रिजर्व बैंक है उसी तरह से अमेरिका के बैंक को फेडरल बैंक कहा जाता है, कि फेडरल बैंक ने अपने यहां की जो ब्याज दर थी बढ़ानी थी वो ब्याज दर में वृद्धि नहीं की। अब आपको सोचना यह कि यार अगर फेडरल बैंक ब्याज दर में वृद्धि नहीं कर रहा है तो इसका सोने की कीमत में बढ़ने से क्या संबंध है, इसके बारे में न्यूज में कुछ नहीं बताया गया है और न्यूज में बताया भी नहीं जाता है ना। ये तो फिर जो आर्थिक समीक्षक हैं वो इसके रीजन को बताएंगे, या अखबारों में अगर इस पर कुछ लिखा जाएगा तब इस पर बात होगी। मैं आपको थोड़ा सा केवल ये बता दूंगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 करोड़ रुपए है और आप इस 5 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप अमेरिका में रह रहे मान लीजिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं फेडरल बैंक में ये पैसा जमा कर देता हूं, बैंक में जमा कर देता हूं, तो वहां से मुझे 2% ब्याज मिल जाएगा, तो आप 5 करोड़ जमा कर देंगे। तो आपने 5 करोड़ रखा हुआ था तो अभी तक ब्याज की दर 1.5% थी, आप उम्मीद कर रहे थे कि यार 2% होगा तभी बैंक को देंगे, नहीं तो क्या फायदा है देने से, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया, 1.5% ही रखा। तो अब ये जो 5 करोड़ रुपए है, अब इसका आप क्या करेंगे, घर में रख करके तो कुछ होगा नहीं, बैंक में आपको ब्याज नहीं के बराबर मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 जगह आपको दिखाई देती है, या तो आप तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों शेयर मार्केट तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, वहां तो आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए, तो करने वाले वहां भी करते हैं, तो फिर लोग गोल्ड में, ज्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सेफ माना जाता है, ऑलमोस्ट काफी सेफ होता है, सुरक्षित होता है। तो लोग, चूंकि फेडरल बैंक ने ब्याज नहीं बढ़ाया तो लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, जब गोल्ड खरीदना शुरू किया तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, जब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, सिंपल सा फार्मूला है। और मैं समझता हूं मेरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बैच के स्टूडेंट इसको समझ चुके होंगे। तो मित्रों ये न्यूज के बारे में इतना ही, न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स का जो जहां तक सवाल है, मैं बहुत से क्लिपिंग्स आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से क्लिपिंग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मित्रों अगर अखबारों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूज क्लिपिंग्स की संख्या भी बढ़ेगी। आपने देखा है कि 2 न्यूज पेपर्स अभी शामिल किए गए, एक हिंदू है और दूसरा हिंदुस्तान है, तो बट नेचुरल है कि फिर उनकी क्लिपिंग्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं जितनी भी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड करता हूं वो सबके सब सबके लिए जरूरी नहीं होती हैं, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए किस टॉपिक पर आपको जानना है, हो सकता है कि उसके बारे में आप पहले से ही बहुत अच्छा जान रहे हो, तो ऐसे में दोहराने के लिहाज से उसको सरसरी निगाह से देख लीजिए या छोड़ दीजिए। मेरे पास बहुत से ऐसे भी मेल आते हैं कि सर क्या ऐसा क्या जो आप क्लिपिंग्स देते हैं इतने सफिशियंट है, इसके बाद भी क्या हमें अखबार पढ़ने की जरूरत होगी। देखिए पढ़ने लिखने से मन मत चुराइए, अगर आपको सिविल सर्विस में अपीयर होना है तो यही शो करता है कि आप पढ़ने से बचना चाहते। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आपके पास अपना एक अखबार तो होना ही चाहिए जिसको आपको पढ़ना है, तब तो आपको पूरा सिनेरियो पता लगेगा। मैं तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट के भेज रहा हूं आपको, तो उस टुकड़े को कैसे समझेंगे आप, जब तक आपको आपके सामने पूरा कंप्लीट संदर्भ नहीं होगा तब तक आप कैसे समझेंगे उस घटना को। एक घटना के बारे में मान लीजिए मैंने एडिटोरियल कमेंट आपको दे दिया, अब उस घटना के एडिटोरियल कमेंट को आप समझेंगे कैसे जब तक कि आपने पूरी घटना को न पढ़ा हो न जाना हो। तो घटना को तो आप सिर्फ अखबार में जानेंगे, क्योंकि मैं न्यूज की क्लिपिंग्स आपको नहीं देता हूं, इसको समझिए, मैं केवल आपको आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स की क्लिपिंग प्रोवाइड करता हूं। हाँ अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज मिल जाती है उस तरीके से तो फिर मैं उसकी क्लिपिंग्स दे देता हूं। तो आपको न्यूज जानना है, अखबार पढ़ना है, न्यूज सुननी है, न्यूज के लिए ये जो क्लिपिंग्स हैं ये सिर्फ व्यूज का काम करती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इसमें 3 दोस्त ऐसे हैं, शेष राव उगाले जो पुणे से हैं, अमित सोनावले वो भी पुणे से हैं, और विजय कुमार दुबे वाराणसी से हैं। इन्होंने लिखा है कि ये डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में अपने दोस्तों को बता रहे हैं और दोस्त उनके लगातार सुन रहे हैं। तो शेष राव, अमित और विजय, मैं आप तीनों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच पूछे मित्रों कि अभी जो मैंने आपको सूचना दी शादाब अकबर कुरैसी के माध्यम से, जो हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट रहे हैं थर्ड बैच के, कि कम्युनिटी अंबेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट पर जो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सेलेक्ट में जो सिलेक्टेड सिविल सर्वेंट हैं आ रहे हैं और गेट टुगेदर हो रहा है, आपस में बातचीत करेंगे, तो सच पूछे तो ये जो डेली ऑडियो है वो इसका भी काम कुछ कुछ वैसा ही है कि किस तरीके से हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पहुंचाएं, उनको इससे मदद मिलेगी, हिंदी के बारे में जो लोगों के दिमाग में जकड़न बनी हुई है वो टूटेगी और लोगों को एक स्तरीय सामग्री मिल सकेगी, लोगों को गाइडेंस मिल सकेगा। दूर दराज के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अब 8-9 अखबार पढ़ने को नहीं मिलेंगे, हर कोई एफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से अगर वो इसके बारे में जानेंगे तो इसका फिर वो इस्तेमाल करने लगेंगे और इसका बड़ा पॉजिटिव रोल उनकी लाइफ में होगा। इसी दृष्टि से मित्रों मैं आप लोगों से लगभग एक आध दिन के बाद ये रिक्वेस्ट कर ही लेता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको बताने की कोशिश कीजिए, फैलाने की कोशिश कीजिए, और आप जानते ही हैं इसकी कोई कीमत उन्हें चुकानी नहीं है, फ्री है, जो हर कोई एफर्ट कर सकता है, बशर्ते उसके पास टाइम हो और थोड़ी सी इच्छा शक्ति हो। और मुझे लगता है कि टाइम तो सबके पास होता है, हाँ इच्छा शक्ति की बात मैं नहीं कर सकता। तो मित्रों आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, उत्कर्ष दीप है पटना बिहार से, अवनीश कुमार रामपुर से, सूरज कुमार चौहान आगरा से, संगीता सौरभ कोटवार बयाना भरतपुर राजस्थान से, संकेत महादिक थाने पश्चिम महाराष्ट्र से, अभिषेक वर्मा, मनीष नगुलवार पुणे से, सागर मलिक, दीपक कुमार, अमित खंडेलवाल जयपुर से, शालिनी पांडे, रामू बर्मन नागांव असम से, प्रद्युम्न मिश्र मऊ उत्तर प्रदेश से, गोपाल कुमार समस्तीपुर से, मयंक कुमार मलैया, रितेश कुमार झा और बलजिंदर सिंह बरनाला पंजाब से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त करके आप लोगों से दो दिन की छुट्टी की अनुमति चाहता हूं। ये दो दिन की छुट्टी आप लोगों की बहुत अच्छे से बीते, बहुत सुखद हो, बहुत उपयोगी हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों की अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।